परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का, जो इसराइलियों द्वारा सिने पर्वत से आरंभ की यात्रा को कनान की सीमा मुआब के मैदान तक की यात्रा से जोड़ती है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, आइए हम आज के अध्ययन को आरंभ करने से पहले परमेश्वर से सहायता मांगे और आज के वचन के लिए उससे आशीष मांगे, ताकि हम अधिक से अधिक उसके वचन को सीख सकें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, उस पर विचार करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पिताजी कि आप हम में से हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दें, ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो हम उसे समझ सकें और इतना ही नहीं, हम उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए भी जो बीमार हैं, दुखी और निराश हैं, चिंता और परेशानी में हैं। प्रभु, आप उनकी भी सुधि लें, उनकी भी सहायता और मदद करें, ताकि ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए और वे आप पर भरोसा रख सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं। चाहे उनके माता पिता, भाई बहन, उनके मित्रगण उन्हें नहीं चाहते, लेकिन आप उन्हें चाहते हैं, क्योंकि वे आपकी सृष्टि हैं, आपने उन्हें रचा है। आप नहीं चाहते कि वे नाश हों, आप चाहते हैं कि वे बच जाएं। प्रभु, आज की इस घड़ी आप उनसे बातचीत करें, उनसे प्रेम करें, उन्हें आशीषित करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने बिलाम के द्वारा इसराइलियों को आशीर्वाद देने के बारे में देखा था और आज भी हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं और बिलाम का चौथा आशीष वचन देखते हैं। गिनती की पुस्तक 24 अध्याय उसके 15 और 16 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर वह अपनी गुड़ बात आरंभ करके कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसकी यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है और इसे हम अक्सर क्रिसमस या जन्म पर्व पर सुनते हैं। हम आगे देखते हैं गिनती की पुस्तक 24 अध्याय उसके 17 से 19 पद में लिखा है, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इसराइल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब और अलंगों को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेर भी, जो उसके शत्रु हैं, दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इसराइल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आवेगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। मित्रों, क्या आपने कभी आश्चर्य के कारण रुक कर यह सोचा है कि ज्योतिषियों ने तारे की ओर कैसे देखना सीखा? उन्होंने एक तारे को इसराइल में जन्मे एक राजा से संबंध जोड़ा। वे क्यों इतने लंबे सफर को आरंभ करेंगे? इस भविष्यवाणी के लगभग 1500 वर्ष बाद हमने पूर्व देश बिलाम का देश से ज्योतिषियों के एक समूह को आते देखा। बिलाम की यह भविष्यवाणी स्पष्टतः संजोए रखी थी, क्योंकि बिलाम पूर्व का एक प्रसिद्ध नबी माना जाता था और ज्योतिषी लोग इस भविष्यवाणी के बारे में जानते थे। जब उन्होंने एक विशिष्ट तारे को देखा तो वही स्मरण किया जो बिलाम ने कहा, याकूब में से एक तारे का उदय होगा, इसराइल में से एक राजदंड उठेगा। जब ये ज्योतिषी यरूशलेम पहुंचे तो उनका प्रश्न था, जिसे हम मत्ती 2 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। मित्रों, जब धर्मशास्त्र में हम दानियल की भविष्यवाणी को जोड़ते हैं, जिसे दानियल ने भी पूर्व में भविष्यवाणी की है, तो लगभग वही समय होता है जब मसीह अर्थात अभिषिक्त पैदा होगा। इसके साथ ही यरूशलेम में ज्योतिषियों का आना बहुत अधिक समझ में आता है। मित्रों, सबसे आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसराइली लोग, जिनके पास पुराना नियम मसीह के आगमन की सभी भविष्यवाणियों सहित मौजूद था, वे मसीह के आगमन के विषय बिल्कुल निश्चिंत थे। केवल एक छोटा झुंड, हन्ना और शिमोन, इसके अपवाद थे। जब ज्योतिषियों का यह समूह लगभग 303 की संख्या में यरूशलेम में इकट्ठा हुआ, तो सारा नगर हेरोद राजा सहित घबरा गए। उनके आगमन से बड़े दिन की कहानी में 4 चांद और लग जाते हैं। और सबसे अधिक रोचक बात तो यह है कि इसका श्रेय या संबंध बूढ़े बदमाश विलाम से है। अब विलाम इसराइल के चारों ओर के राष्ट्रों से संबंधित भविष्यवाणी करता है। गिनती की पुस्तक 24 अध्याय उसके 20 से 24 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाश ही है। फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है और तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तो भी केन उजड़ जाएगा और अंत में अशुर तुझे बंधुआई में ले आएगा। फिर उसने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब ईश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा, तो भी कित्तियों के पास से जहाज वाले आकर अशुर को और एबेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। मित्रों, निश्चित ही उसने राजा बालाक को उसकी भविष्यवाणी से संतुष्ट नहीं किया। हम आगे पढ़ते हैं जो इस अध्याय का अंतिम पद है, गिनती की पुस्तक 24 अध्याय उसका 25 पद, लिखा है, तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। मित्रों, बिलाम के विषय यह एक अजीब और अद्भुत वक्तव्य है, वह उठा और अपने स्थान को लौट गया। धर्मशास्त्र में केवल एक और व्यक्ति है जिसके बारे में कहा गया है कि वह उसकी जगह पर चला गया, वह यहूदा था। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 25 पद में हम इसे पढ़ते हैं। धर्मशास्त्र उसके बारे में आगे और कुछ भी नहीं कहता है। हम गिनती की पुस्तक 31 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं कि बिलाम मिद्यान के राजा के साथ युद्ध करते मर गया। बिलाम जोवर का पुत्र था, तलवार से घात किया गया। विलाम घात किया गया और यहूदा उसके स्थान पर पहुंच गया। मित्रों, यहां पर अध्याय 24 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 25 से जारी रखेंगे और इस अध्याय का विषय है विलाम का सिद्धांत, मुआबी लोगों के साथ मूर्ति पूजा व व्यभिचार, जो लगातार जारी है। इस अध्याय में वास्तव में विलाम द्वारा किए गए सबसे शरारती और शैतानी बातों की चर्चा होगी। हमने बिलाम के मार्ग का पता लगा लिया, जिसे हम 2 पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं। मित्रों, जो लालच का पथ या मार्ग था, वह रुपए पैसे या धन के पीछे भाग रहा था और उसके लिए अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ाने को भी तैयार था। उसकी गलती थी कि वह परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में अवगत नहीं था कि वे पापी जो उस पर भरोसा रखते वे धर्मी ठहराए जाते हैं। अप्रकाशित वाक्यों में विलाम के सिद्धांत का विवरण सबसे धुरता की बात जो इसने सिखाई, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो विलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो बालाक को सिखाता रहा कि इसराइलियों को ठोकर खिलाए, कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। मित्रों, जब विलाम ने देखा कि वह इसराइल को श्राप नहीं दे सका, तो उसने बालाक को सिखाया कि इन लोगों को किस प्रकार पथ भ्रष्ट किया जाए। आज भी यह विचार प्रचलित है, अगर आप उन्हें चूम नहीं सकते तो चिपक तो सकते हैं, क्योंकि बालाक इन लोगों से युद्ध करने में असमर्थ था, तो उसको उनसे हाथ मिलाने के द्वारा पद भ्रष्ट करना सिखाया। आइए देखें विलाम की शिक्षा। गिनती की पुस्तक 25 अध्याय उसके 1 से 3 पद में हम पढ़ते हैं। लिखा है, इस्राएली सित्तीम में रहते थे और लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यों इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। मित्रों, आपने देखा कि क्या हुआ। बिलाम इस्राएल को शाप नहीं दे सका, परंतु बालाक को क्या करना चाहिए इसको अच्छे से समझा दिया। वे इस्राएल में घुस जाएं, घुल मिल जाएं और मिश्रित होकर संकर विवाह करें, अर्थात मिश्रित विवाह करें, परमेश्वर से विमुख करने के लिए मूर्ति पूजा करना सिखाएं। मित्रों, मुझे निश्चय है कि उन्होंने लोगों को सिखाया कि वे अधिक ईमानदार या भक्त बनने की कोशिश न करें और न ही संकीर्ण विचारधारा को अपनाएं। उन्हें समझाया कि वे खुले मन से उनके सभी त्योहारों में, उनकी आराधना और भक्ति में, उनके पूजा पाठ में भाग लेने को सदैव आमंत्रित हैं, परंतु स्वयं इसराइल की आराधना में कभी भी शामिल नहीं हुए। मित्रों, मुझे बड़ा आनंद आता है जब कभी किसी चर्च का उदारवादी सदस्य मुझ रूढ़िवादी को उसकी ओर आने व सहमति प्रकट करने की लालसा रखता है, परंतु मैं कभी भी उसको अपने पक्ष में जाते हुए नहीं पाता, तो भी वह अपने को उदारवादी मन और मुझे संकीर्ण विचार वाला का आरोप लगाता है। यह भी एक रोचक बात है कि मानवीय स्वभाव सदैव ही नीचे की ओर अर्थात परमेश्वर से विमुख जाने को लालायित रहता है, और यही कारण है कि अनेक धार्मिक वाद विवाद, धार्मिक रेडियो कोलाहल, कलीसिया संबंधी लड़ाई झगड़े और शैक्षिक धार्मिक पद्धतियां सब जगह दिखाई पड़ती हैं। वे स्वाभाविक मनुष्य को पसंद आती है, और यही कारण है कि जिसकी वजह से अनेक लोग सोचते हैं कि वे बाइबल की शिक्षा देने में असमर्थ हैं। यदि मैं बाइबल की शिक्षा के अतिरिक्त कुछ और कार्यक्रम आरंभ करूं, तो वह निश्चित ही फलेगा और फूलेगा, इवन कि प्रफुल्लित होगा, परंतु खेद से अर्थात दुख से कहना पड़ता है कि ऐसा ही होता है। बूढ़े बिलाम को पता था कि इस प्रकार के धार्मिक उन्मादों में फंसाकर बालाक लोगों को पथ भ्रष्ट कर सकेगा, और वह इस बात की अपील करता है तथा इस्राएलियों को बाल देवता की पूजा करने में फंसा लेता है। आगे देखिए कि क्या होता है। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इसराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इसराइली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। मित्रों, आप कहेंगे यह तो चीरफाड़ की पराकाष्ठा है। सो तो है भी। आप जानते हैं कि क्यों? क्योंकि रोग असाध्य है। इससे व्यक्ति ईश्वर से विमुख होकर नरक तक पहुंच सकता है। इसलिए परमेश्वर इसराइल राष्ट्र को दया करके बचाना चाहता है। हम गिनती की पुस्तक 25 अध्याय उसके 6 से 9 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और जब इसराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इसराइली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर इलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बरछी ली, और उस इसराइली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बरछी बेध दी। इस पर इसराइलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई, और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। मित्रों, आप देखते हैं कि यही वह तरीका था जिससे बिलाम इसराइल को श्राप देता है, और यही बिलाम की शिक्षा भी है। मित्रों, हमारे प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में बताया कि इसी प्रकार की शिक्षा आज भी कलीसिया में प्रचलित है। मेरा दृष्टिकोण भी है कि शत्रु ईश्वर के लोगों या उसके काम अथवा परमेश्वर के कलीसिया को बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कलीसिया की हानि कभी भी बाहर से नहीं हुई। पर्गमुस की कलीसिया को प्रभु कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:14 में, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो विलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो बालाक को सिखाता रहा कि इसराइलियों को ठोकर खिलाए कि वे मूर्तियों पर चढ़ाए हुए वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। मित्रों, यह विलाम की शिक्षा है। प्राचीन कलिसिया के इतिहास में पिर्गामोन संसार और कलिसिया के एकता का प्रतीक है। बाढ़ की तरह संसारिकता आई और शैतान पिर्गामोन की कलिसिया में घुल मिल गया। सताव बाहर से नहीं था, परंतु अंदर से विलाम की शिक्षा ने कलिसिया को विनाश की ओर ढकेल दिया। मित्रों, यहाँ बड़ा सिद्धांत कलिसिया के सभी संबंधों में लागू होता है। अब द्वितीय महायुद्ध के समय चारों ओर तोपें रखी गई हैं, हमारे शत्रु को बाहर रखने की भरपूर कोशिश की गई है, पर क्या हुआ, हम अंदर से टूटने लगे। हमारे देश में इतना बड़ा अनाचार पहले नहीं हुआ था। आज राष्ट्र के अंदर बहुत से क्रांतिकारी घुस गए हैं, बहुत से विद्रोही घुस गए हैं, हम अंदर से खोखले पड़ गए। रोम भी बाहर से बर्बाद नहीं हुआ, किसी शत्रु को ऐसा करना संभव नहीं था, परंतु रोम का पतन भीतर से ही हुआ। मित्रों, जैसा कि एक कहावत है और हमारे देश में यह बहुत प्रचलित है कि घर का भेदिया लंका ढाए, अर्थात शत्रु घर में ही विनाश लाता है। क्या आपने ध्यान दिया कि प्रभु यीशु भी अंदर ही से पकड़वाया गया? यह रोमी सिपाही नहीं थे, परंतु उन्होंने उसे गिरफ्तार किया और वह था उसका एक शिष्य यहूदा। यह तो उसका एक अपना ही शिष्य था जिसने उसे पकड़वाया। मित्रों, यह तो उसका अपना राष्ट्र ही था जिसने उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए रोम के हाथों में सौंप दिया। प्रभु यीशु का पकड़वाना सदैव भीतर से ही हुआ, आज भी यही सत्य है। मित्रों, यही विलाम की शिक्षा है और हमें उसे तिरस्कृत करना चाहिए। अब याजक पद की वाचा एलियाजर के पुत्र पिनहास हारून के परपोते को सौंपी गई। प्रभु परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि मिद्यानियों को मार डाले। इसके साथ ही इस अध्याय का अंत भी हो जाता है। आइए हम गिनती की पुस्तक 25:10-18 को पढ़ें, जहां पर लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इसराइलों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहां तक दूर कर दिया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूं और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उससे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इसराइलियों के लिए प्रायश्चित किया। तो इसराइली पुरुष मिद्यानी स्त्री के संग मारा गया, उसका नाम जिम्री था। वह साल का पुत्र और सिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था, और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई उसका नाम कोजबी था। वह सूर की बेटी थी जो मिद्यानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानी को सता और उन्हें मार, क्योंकि पोर के विषय और कोजबी के विषय वे तुमको छल करके सताते हैं। कोजबी तो एक मिद्यानी प्रधान की बेटी और मिद्यानियों की जाति बहन थी और मरी के दिन में पोर के मामले में मारी गई। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 25 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 26 से बनाए रखेंगे। इस अध्याय का विषय है इसराइल की दूसरी जनगणना। मित्रों, गिनती नामक पुस्तक के एक नए भाग का आरंभ यहाँ पर होता है। नई पीढ़ी प्रतिज्ञा देश में प्रवेश की तैयारी करती है। पुस्तक का बाकी भाग इसी तैयारी से जुड़ा हुआ है। आइए देखें नई पीढ़ी की जनगणना। जब हम उनके जंगल यात्रा के द्वितीय वर्ष की जनगणना की तुलना 40 वर्ष पूर्व यात्रा से करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। पुराने नियम की टीका किल डिट्रेस द्वारा लिखित पुस्तक में निम्न आंकड़े मिलते हैं। कई गोत्रों में बढ़त जारी है, दूसरों में घटी भी दिखाई पड़ती है। इसराइल की कुल कमी 1820 बताई गई है। आइए हम उनके आंकड़ों को देखें। रूबेन 46,500 पहले जनगणना में और दूसरी जनगणना में 43,730। शिमोन 59,300 दूसरी जनगणना में 22,200। गाद 45,650 दूसरी जनगणना में 40,500, इस्साकर 54,400, दूसरी जनगणना में 64,300, जबलून 57,400, दूसरी जनगणना में 60,500, इफ्रेम 40,500, बाद वाले जनगणना में 32,500, मनश्शे 32,200, दूसरी जनगणना में 52,700, बिन्यामिन 35,400, दूसरी जनगणना में 45,600, दान 62,700, दूसरी जनगणना में 64,400, आशेर पहली जनगणना में 41,500 और दूसरी जनगणना में 53,400, नप्ताली पहली जनगणना में 53,400 और दूसरी जनगणना में 45,400। इस प्रकार से कुल योग 603,550 पहली जनगणना में और दूसरी जनगणना में 601,730। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, रूबेन का गोत्र 2,770 संख्या से कम हुआ। तो आइए अब हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 26 अध्याय उसके 7 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, रूबेन वाले कुल ये ही थे और इनमें से जो गिने हुए थे वे 43,730 पुरुष थे। मित्रों, यदि प्रथम अध्याय में जनगणना को मुड़कर देखें तो आपको पता चलेगा कि वे 46,500 थे। इसे हम गिनती की पुस्तक 1 अध्याय के 21 पद में देख सकते हैं। यह गणना 40 वर्ष पूर्व की थी जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी। रूबेन के विपरीत दान गोत्र की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हम पढ़ते हैं 26 अध्याय उसके 42 और 43 पद में। लिखा है, और दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला यह था, अर्थात शुहाम, जिससे सुहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था, और सुहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। मित्रों, पहली जनगणना में दान के विषय कहा गया, जिसे हम गिनती की पुस्तक 1 अध्याय उसके 39 पद में पाते हैं, 62,700, और दूसरे शब्दों में दान की बढ़ोतरी 1,700 पुरुषों की हुई है, पर तो भी दूसरी जनगणना के अनुसार इसराइल में 18,200 सदस्यों की कमी अंकित हुई है। पुरानी पीढ़ी के लोगों का अंत जंगल में ही हो गया, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसके 29 पद में, तुम में से 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने लोग गिने गए थे और जो मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे उनके शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। तब हम आगे देखते हैं गिनती की पुस्तक 26 अध्याय उसके 64 और 65 पद में लिखा हुआ है, परंतु जिन इसराइलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनै के जंगल में गिना था उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। मित्रों, यह एक नई पीढ़ी थी। पुरानी पीढ़ी के लोग सिवाय कालेब और यहोशू को छोड़कर सब मर गए। परमेश्वर ने 20 वर्ष की आयु से छोटे लोगों को कादेश बर्निया के विद्रोह के लिए दोषी नहीं ठहराया। इससे आंकड़ों में भिन्नता का पता आसानी से लगाया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम और न ही मैं 20 वर्ष की आयु का पोषक हूँ, परंतु हम में से अधिकतर के मन में संदेह उत्पन्न होता है। मेरे मित्रों, केवल दो व्यक्तियों के अलावा पीढ़ी पूर्णता नहीं थी। इन दो व्यक्तियों के बारे में हम विस्तार पूर्वक और मनोरंजक तरीके से यहोशू के पुस्तक में विचार करेंगे। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आप सबों ने अवश्य ही आत्मिक लाभ उठाया है। विशेष करके हमने इस बात को अच्छी तरह से जान लिया है कि विलाम की गलत शिक्षा आज भी कलीसिया में पाई जाती है, अर्थात कलीसिया की हानि बाहर से नहीं परंतु भीतर से ही होती है विलाम के शिक्षा मानने वालों के द्वारा। इसलिए आज आप अपने को परख कर देखें, कहीं आप भी तो विलाम की शिक्षा पर नहीं चल रहे हैं। जो लोगों को गलत शिक्षा देते हैं, अर्थात जो लोगों में गलत शिक्षा को फैलाते हैं, मित्रों, आज ही सही निर्णय लें और परमेश्वर के वचन का सही उपयोग करें, ताकि आप आत्मिक रूप से बलवंत हों और कलीसिया भी सही शिक्षा में आगे बढ़े, ताकि प्रत्येक जीवन प्रभु के लिए बचाया जाए। प्रभु आप सबको इस अध्ययन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।